परम शांति में तीस ग्यारह अठासी का पहला क्लास 21 नंबर के रजिस्टर में 88 के दुख में है भक्ति मार्ग का गायन, क्योंकि भक्ति में है तो उनकी बुद्धि में भक्ति का गायन। यहाँ पर भक्ति का गायन नहीं है, यहाँ तो बाप का गायन है, बाप की महिमा करनी होती है। जिस बाप से इतना अंश बरसा मिलता है, मनुष्य कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है, बाप मिलता है जिससे फिर सुख का वर्षा मिलता है। भक्ति में सुख नहीं, भक्ति में रहते हुए भी याद तो सरसों करते ही है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुए, ये भी यादगार तो यही की है। भक्ति में शरीर से मरने की बात है, स्वर्ग में जाते तो कोई नहीं, परंतु यादगार चली आती है कि मरे बगैर स्वर्ग नहीं। माना यहाँ जो जीते जी मरते हैं ब्राह्मण जीवन में, वो स्वर्गीय किसी दुनिया का अनुभव कर पाते हैं। अगर देहदान से पुरानी दुनिया से देह और देह के संबंधों से मरते नहीं हैं, तो खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। दुनिया में जो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, वहाँ खुश तो होते नहीं। ऐसे ही कह देते हैं स्वर्गवासी, स्वर्गवासी हुआ तो खुश होना चाहिए, जबकि स्वर्ग में जन्म लेते तो फिर रोने की तो दरकार ही नहीं। वास्तव में ये सच्ची बात तो है नहीं कि स्वर्गवासी हुआ, इसलिए रोते रहते हैं। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी बाप के बच्चे बनकर अगर रोते रहते हैं तो स्वर्गवासी हुए या नरकवासी? नरकवासी। अगर देह और देह के संबंधों से पुरानी दुनिया से मोह ममत्व मिट गया, एक परमात्मा बाप के बन गए, तो फिर रोने की दरकार नहीं रहती, फिर तो खुशियां ही खुशियां हैं, मौजें ही मौजें हैं। तो अब इन रोने वालों का कल्याण कैसे हो? रोना दुख की निशानी है। मनुष्य रोते तो है ना, देह अभिमान होता है तो रोते हैं। बच्चे जन्मते हैं तो भी रोते हैं, क्योंकि दुख होता है। दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। यहाँ जन्म लेने से क्या कनेक्शन? ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा जन्म होता है? मर्जी का जन्म होता है। तो बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, वो तो लौकिक बात हुई। और यहाँ भी जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है तो रोता है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब लेता है तो सारी दुनिया अपोज करती है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी अपोजिशन होता है, बच्चा ही रोता है, दुनिया नहीं रोती। अगर दुख नहीं होगा तो जरूर हर्षित रहेंगे। रोना माना कोई न कोई अकल्याण होता है, सत्युग में कभी अकल्याण नहीं होता, इसलिए वहां कभी रोते नहीं है, अकल्याण की बात होती नहीं। यहाँ कभी कमाई में घाटा, कभी अन्न नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं, दुख में रोते हैं। भगवान को याद करते हैं कि आकर सभी का कल्याण करो। अगर सर्वव्यापी है तो फिर किसको कहते हैं कि कल्याण करो? परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी मानना बड़े से बड़ी भूल है। बाप है सबका कल्याणकारी, वो एक ही कल्याणकारी है तो जरूर सबका कल्याण करेंगे। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमेशा कल्याण ही करते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। भक्त क्या कहते हैं कि परमात्मा ही सुख देता है, परमात्मा ही दुख देता है। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी जो भक्त आत्मा होंगे, भक्ति के संस्कार जिनमें रहे होंगे, ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं बैठा होगा, तो उनको भी यही भावना आएगी क्या कि भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। परंतु भगवान तो हमेशा कल्याण ही कल्याण करते हैं। अब वह परम पिता परमात्मा आवे कब जो विश्व का कल्याण करे? विश्व का कल्याण करने वाला और तो कोई नहीं है। बाप को फिर सर्वव्यापी कह देते हैं तो कितनी भारी भूल है। अभी बाप अपना परिचय दे करके कहते हैं मन मना भव, किसमें ही कल्याण है, किसमें? मन मना भव। मेरे मन में समा जा, माना मेरे संकल्पों में समा जा। सत्य त्रेता में कोई भी हालत में कल्याण नहीं होता है। त्रेता में ही जबकि राम राज्य है तो वहां शेर बकरी इकट्ठी जल पीते हैं। हम राज्य राम सीता के राज्य की इतनी स्थिति नहीं करेंगे जितनी लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थिति करेंगे, क्योंकि राम सीता तो दो कला कम हो जाने से कुछ न कुछ सुख कम मिलता है। हम तो पसंद करते हैं स्वर्ग, वो स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं। इसका मतलब दो कला कम स्वर्ग जो होता है वो बाप स्थापन नहीं करते। बाप कौन सा स्वर्ग स्थापन करते हैं? सोलह कलाओं से भी ऊपर, सोलह कला जो स्वर्ग स्थापन होता है उसमें तो उतरती कला होगी। संगम की स्वर्ग में लगातार चढ़ती कला ही चढ़ती कला होगी, तो वो स्वर्ग बाप स्थापन करते हैं। उसमें पूरा वर्षा पाए तो बहुत अच्छा है। पूरा वर्षा क्या हुआ संगम युगी स्वर्ग में? पूरा वर्षा क्या हुआ जो डायरेक्ट बाप से मिलता है? विश्व की बात है, ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा ले हम कल्याण करें। हर एक को अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। बाप ने समझाया एक है आसुरी संप्रदाय और दूसरी है दैवी संप्रदाय। अभी एक तरफ रावण राज्य है और दूसरी तरफ मैं दैवी संप्रदाय स्थापन कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि अभी दैवी संप्रदाय है नहीं, लेकिन मैं स्थापन कर रहा हूं। आसुरी संप्रदाय को मैं दैवी बना रहा हूं। कहेंगे दैवी संप्रदाय तो सतयुग में होती है। बाप कहते हैं आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय भविष्य के लिए बनाता हूं। अभी है ब्राह्मण संप्रदाय जो दैवी संप्रदाय बन रही है। तो कोई कहे कितना टाइम लगेगा, बन रही है करते करते कितने साल हो गए, 50 55 56 साल होने जा रहे हैं और अभी तक बनी ही रही है। गुरु नानक ने भी कहा है मनुष्य से देवता की करत न लागी बार। इसका क्या मतलब हुआ, फिर ये 56 साल किस खाते में गए हैं? मनुष्य से जिसको परमात्मा आकर के देवता बनाता है, नर से नारायण बनाता है, उसके लिए तो एक सेकंड ही है, लेकिन सारे में चल जाए। वाह भाई, हेलो भाई, तुमको तो खूब नीचे हुआ है। तो गुरु नानक ने भी कहा मनुष्य से देवता की करत न लागी वार। मनुष्य को देवता बनने में एक सेकंड लगता है। कौन से मनुष्य को देवता बनने में एक सेकंड लगता है? सभी ब्राह्मणों को। ब्रह्मा के लिए गायन है, ब्रह्मा से विष्णु बनने में एक सेकंड। तो जरूर रफ्तार इतनी तेज होगी, कितनी तेज कि एक सेकंड में नीचे से ऊपर चल जाए। यह है प्रैक्टिस की बात। क्या योग बल की भी प्रैक्टिस होती है, तो सब ऐसे एक जैसे तो अभ्यासी नहीं होंगे, सब एक जैसे पुरुषार्थी तो नहीं होंगे, क्योंकि एक है जिसको पहले दुर्गति से सदगति में जाना होता है, उस एक के लिए है ये बात कि एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते। तो एक के ऊपर जिम्मेवारी बहुत है। क्या जिम्मेवारी है? माता पिता के ऊपर जिम्मेवारी होती है बच्चों की। बच्चे जब तक बच्चों को कल्याण न हो तब तक माता पिता चैन की नींद सो नहीं सकते। तो बाप दादा अभी किस लिए रुके हुए हैं? चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के कल्याण के लिए बाप दादा को भी रुकना पड़ा। जीवन मुक्ति निधि हुई है, परंतु वो कौन से मनुष्य हैं जिनको देवता बनाएंगे? ब्रह्मा के आदि मध्यंत को तो जानते नहीं है, सृष्टि के आदि में जो लक्ष्मी नारायण शेषाचारी हैं वो भी आदि मध्यंत को नहीं जानते। त्रिकालदर्शी नहीं, आगे जन्म में त्रिकालदर्शी थे। सदर्शन चक्रधारी थे,
तब उन्होंने ये राजपद पाया। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र दे दिया विष्णु को। अब विष्णु तो होता है सत्युगुण, उनको तो सुदर्शन चक्र की दरकार ही नहीं। तो ये भी समझाना है कि सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण है तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे। वो तो कृष्ण को भी कह देते हैं, विष्णु को भी कह देते हैं सुदर्शन चक्रधारी, ये तो जानते नहीं कि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। कौन कौन से दो रूप? एक संगम भी लक्ष्मी नारायण और एक सती भी लक्ष्मी नारायण। तो सुदर्शन चक्रधारी कौन से हुए? संगम भी लक्ष्मी नारायण सुदर्शन चक्रधारी हुए। हम भी पहले नहीं जानते थे क्या कि संगम भी नरते नारायण बनने वाले अलग और सती में प्रिंस से नारायण बनने वाला अलग। मनुष्य तो हर बात में कह देते हैं भावी। नेहरू मारा कहेंगे भावी, उस भावी को कोई टाल नहीं सकता। ऐसे ही कह देते हैं कि जो कुछ हुआ सो भावी, जो होने का है उसको भी टाल नहीं सकते। तो ये तो ड्रामा है। तो क्या पहले पहले बाप का परिचय दें या ड्रामा करा समझाए? तो भी जब बाबा की याद हो तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। ड्रामा का राज पहले नहीं समझाए, पहले क्या करें? बाप का परिचय देना चाहिए। कैसे व्यापक बाप का परिचय? सर्वव्यापी बाप का परिचय? सर्वव्यापी बाप होता नहीं, बाप तो एक व्यापी बन करके आता है विश्व का कल्याण करने के लिए, क्योंकि एक ही सर्व का सर्वगति जाता है। सर्वव्यापी हो तो अनेक अनेक विश्व के कल्याणकारी सर्वगति जाता बन गया। बेहद का बाबा शिव बाबा तो मशहूर है, रुद्र बाबा भी नहीं कहते, शिव बाबा नामी ग्रामी। रुद्र बाबा क्यों नहीं कहते? रुद्र रूप धारण करता है, मीठा रूप तो है नहीं, और बाबा तो मीठे के मीठे को कहा जाता है। जो नाती पोत्रे होते हैं बाबा तो उनको कितना प्यार करते हैं, तो रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। किनको दुख किनको देता है? देहाभिमानियों को या आत्माभिमानियों को? शिव बाबा नामी ग्रामी है क्या? नामी ग्रामी मान गांव गांव में उसकी मूर्तियां मिली हैं, विदेशों में भी उसकी नग्न मूर्तियां खुदाइयों में मिली हैं। तो बहुत प्राचीन काल से ही उस शिव बाबा का नाम ग्राम विख्यात है। बाप ने समझाया है कि जहां जहां भक्त हैं उनको जाकर के समझाओ। शिव बाबा के भक्त कहाँ कहाँ? जब विदेशों में भी मूर्तियां मिली हैं तो जरूर विदेशों में भी उसको मानने वाले भक्त होंगे ना। बड़े बड़े पंडित हैं जिनकी जंजीरों में फाड़ों से जकड़े हुए, उन्हों को जाकर छुड़ाना है। बाप कहते हैं सबको छोड़ो। अखबार में पढ़ा था मनुष्य कहते हैं हिमालय की इतनी मल्टी मिलियन एज है, अब हिमालय की भी आयु होती है क्या? माने हिमालय भी मरता जीता है क्या? हैं? वो भी नष्ट होता है क्या? पृथ्वी कभी नष्ट होती है क्या? नदियां कभी नष्ट होती है क्या? वो तो हमेशा चली ही आती है। सतयुग में सतो प्रधान और कलयुग में तमो प्रधान हो जाती है। हिमालय तो सदैव है ही है, है? हिम का आलय, हिम मान बर्फ शाम, जैसे कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं कि शांति ही शांति लगी पड़ी, तो शांति धाम माना ऊंचे से ऊंचा धाम, हिमालय मानो ऊंचे से ऊंचा हिम का घर, तो हिमालय कभी गुम होता है क्या? ये भारत भी अनादि है, कब रचा गया उनकी एज नहीं निकाल सकते। वैसे हिमालय के लिए भी कह सकते हैं ये कब से है। अब ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं जो अखबार में पढ़े और झट उनको रिस्पॉन्ड लिखे। इस हिमालय पहाड़ की आयु गिनी नहीं जाती, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि आकाश की व समुद्र की आयु इतनी है, है? न आकाश की आयु आंकी जा सकती और न समुद्र की आयु आंकी जा सकती। हिमालय की आयु कहते हैं तो समुद्र की भी बताए, जानते कुछ ये नहीं। या तो तुमको बाप से वर्षा पाना है, यह है ईश्वरीय फैमिली। तुम जानते हो बाप का बनने से स्वर्ग के मालिक बनते हैं, कब बनते हैं स्वर्ग के मालिक? है बाप का बनने से, इसका मतलब जो बाप के बनेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे और जो नहीं बनेंगे वो पुरुषार्थ कितना भी ऊंचा करें लेकिन फिर भी बाप के वारसदार है। मानो राजघराने में आने वाली राजयोगी आत्मा नहीं बन सकेंगे, जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे और बाप के नहीं बनेंगे तो कितना भी पुरुषार्थ करें ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में आ जाएंगे, प्रजापद पाएंगे, साहूकार बन जाएंगे लेकिन राजघराने में नहीं आएंगे, स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। एक राजा जनक की बात नहीं है, जीवन मुक्ति में अथवा राम राज्य में तो बहुत होंगे ना, सबको जीवन मुक्ति मिली होगी। तुम सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के पुरुषार्थी हो, सब नहीं है, तुम बच्चा बने हो, मम्मा बाबा कहते हो तो जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना, समझ सकते हैं। प्रजा तो ढेर की ढेर बनती जाती है, दिन प्रतिदिन प्रभाव तो निकल रहा है ना, प्रभावित माना प्रजा, तो जो प्रभावित होकर के चले जाते हैं लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते वो बन जाती है प्रजा। ये धर्म की स्थापना करना बड़ी मेहनत है, वो तो ऊपर से आकर के स्थापना करते हैं, इसमें मेहनत क्यों है, हाँ, जो यहाँ तमो प्रधान आत्माएं हैं उन्हीं के द्वारा स्थापना होती है, और वो तो ऊपर से सत्व प्रधान आत्माएं आती हैं, पावरफुल आत्माएं आती हैं, उनके लिए धर्म स्थापना करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। फिर उनके पिछाड़ी और भी ऊपर से आती रहती है, उनके सहयोगी भी, दूसरे फॉलोअर्स भी उनके पीछे पीछे सत्व प्रधान आत्माएं आती रहती हैं। तो उस धर्म की, उन धर्मों की स्थापना में कोई विशेष मेहनत की बात नहीं है। और यहाँ तो जो धर्म स्थापना के निमित्त बनते हैं वो ऊंची स्टेज से नहीं आते हैं, वो तो कैसी स्टेज में होते हैं, ऑलरेडी पहले से ही तमो प्रधान नीची स्टेज में होते हैं। तो उन तमो प्रधानों को सतो प्रधान बनने में मेहनत जाती भागती है। यहाँ तो एक एक को लाइक बनाना पड़ता है, माने यहाँ तो जो भी धर्म स्थापना के निमित्त बनते हैं वो तो सारे ही के सारे पहले नालायक होते हैं, फिर लाइक बनते हैं। राजभाग पाने की बाप की दृष्टि में पहले क्या होते हैं, नालायक, और फिर बाप उनको लायक बनाते हैं। लायक बनाना बाप का काम हो जाता है, धर्म पिताएं कोई लायक नहीं बनाते, वो तो सत्व प्रधान आत्मा ऊपर से आती ही है ऑलरेडी, तो ऐसे नहीं कि वो धर्म पिताएं आते हैं तो कोई लायक बनाते हैं, लायक बनाना उनका काम है, ये तो बाप का ही काम है नालायकों को लायक बनाना। तो वो क्या बनाते हैं, वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं को क्या बनाते हैं, द्वापर युग से इब्राहिम आया, जब नहीं आया था तो देवता लायक थे देवात्मा, फिर जब उसने आकर के प्रवेश किया तो क्या बना दिया, नालायक बना दिया, बेविचारी बना दिया, वैशालवासी बना दिया। तो ये तो एक ही है जो आकर के लायक बना दिया, इनको लायक बनाना पड़ता है राजभाग पाने के लिए। जो मुक्ति जीवन मुक्ति के लायक थे सबको माया ने नालायक बनाई दिया, पांच तत्व भी नालायक बने, क्या पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये भी नालायक बन जाते, लायक नालायक चैतन्य बनता है या जड़ भी बनता है। हाँ, चैतन्य के हिसाब से जड़ प्रकृति भी परिवर्तन होती है, तीन तत्व तो पांच होते हैं। हाँ, ये चैतन्य में नहीं होंगे, सब पता चल जाएंगे धीरे धीरे। तुम्हारा अभी सेकंड जो पुरुषार्थ चल रहा है, समझते हैं कल्प पहले भी फलाने ने ऐसा कम पुरुषार्थ किया था, जो आश्चर्यवत भागंती हो गए, आरकति दे दी। अभी हम प्रैक्टिकल में देखते रहते हैं क्या है कि बाप के बनते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं, ये भी समझते हैं बिना सामने खड़ा है, ड्रामा अनुसार सबको एक्ट में आना है, क्योंकि नर चाहत कछु और है और हो बैठे हैं कुछ और। मनुष्य अपनी अपनी प्लानिंग बनाते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। दूसरा तो ये है कि जब परमात्मा बाप को पहचान लिया, अंजाम कर लिया कि हमारा बाप है, फिर जैसे चलाए वैसे चलना चाहिए ना। ड्रामा को चेंज करने के निमित्त कौन बनते हैं? कौन बनते हैं? मनुष्य ही बनते हैं ना। मनुष्य आत्मा ही ड्रामा को चेंज करने के निमित्त बनती है। बल नालायक हैं पहले, लेकिन नालायकों में भी कुछ तो लायकात इतनी तो होती है कि परमात्मा बाप को पहचानते हैं और पहचान कर जैसे चलाए वैसे चलते हैं। अगर नालायक हैं तो सच्चे और साफ दिल तो बन सकते हैं कि वो भी नहीं बन सकते? तो सच्चे दिल पर साहब राजी। उन नालायकों को लायक बनाना पड़ता है, पड़ता है मन। बाबा की भी मजबूरी है जो ऐसे नालायकों को लायक बनाना पड़ता है। जिम्मेवारी भी तब ली है जब तुम सच्चे हो तो। सच्चे दिल पर साहब राजी होगा, झूठे दिल पर सच्चा साहब तब राजी नहीं होगा। तुमने साक्षात्कार किया है, नर चाहत कुछ और है, होवत है कुछ और। वो चाहते हैं पीस हो जाए, शांति स्थापन हो जाए, परंतु भाभी को तुम बच्चे जानते हो।
21 नंबर के रजिस्टर में 88/31/11/88 का पाठक ला मिला चुकी। दूसरे पेज का मध्य तो कौन चाहते हैं कि पीस हो? दुनिया वाले भी चाहते हैं कि पीस हो, शांति स्थापन होगा, और ब्राह्मणों की संयम की दुनिया में भी बहुत से यही चाहते हैं। क्या सब ये झगड़ा चंपा खत्म हो जाए, शांति स्थापन हो जाए? लेकिन हम क्या चाहते हैं? शांति स्थापन होगी कि और ही ज्यादा अभी अशांति स्थापन होगी? नई दुनिया की स्थापना के अर्थ पुरानी दुनिया का विनाश वही रहना, और विनाश वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से ही निकलती है। तो जब यज्ञ कुंड से ही विनाश वाला निकलेगी और सारे संसार में फैलेगी, तो पहले पहले कहाँ कौन होंगे जो सबके ब्राह्मण होंगे? आहुति देने में जिनके हाथ झुलस जाते हैं और पीछे हटा लेते हैं, पहले आहुति डालते हैं तन बने बहन सब परिवार की, और डाल करके फिर जब आग लगती है, खेत लगता है, तो क्या करते हैं? पीछे हटा लेते हैं। तो कमजोर हुए है पावर के लिए, तो कमजोर हो गए हैं, है तो आहुति लगाने वाले, लेकिन है कमजोर, तो फिर विनाश किसका होगा? कमजोर होगा विनाश होगा। जिन्होंने परम पिता परमात्मा फिर से पूरी पावर भरी है, वो तो निश्चय करके बैठे हैं कि हम सर हथेली पर लेकर के आए। उनका तो दो अभिमान टूट चुका। तुमने साक्षात्कार किया है, वो भले कितना भी माथा मारे कि विनाश न हो, परंतु ये भावी चल नहीं सकती। ये विनाश तो जरूर होना है। अर्थ से नेचुरल कैलेमिटी होगी। अर्थ मन भूकंप, धरती हिलेगी। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में धरणी कौन सी है? जो यज्ञ की निमित्त कन्याएं माताएं हैं वही वही धरणी है। तो वो धरणी हिलती है माने ये बुद्धि रूपी की धरणी हिल जाती है। तो जो आधार ही हिल जाएगा तो उसके ऊपर खड़े हुए महल मानिया संगठन तो अपने आप हिलेंगे गिरेंगे। ये नेचुरल कैलमिटीज होगी माना प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। जैसे चैतन्य में अर्थ है धरणी है पूरी नदी धरणी। जैसे चैतन्य में प्रकृति है वैसे स्थूल में भी प्रकृति है। तो जब नेचुरल कैलमिटीज होगी तो वो क्या कर सकते हैं? तो विनाश को रोक सकेंगे क्या? हाँ इतना हो सकता है कि जिन्होंने अपनी प्रकृति को कंट्रोल किया होगा, स्वभाव संस्कारों को कंट्रोल किया होगा, वो प्रकृति जीत उस प्रकृति के विनाश से प्रभावित प्रभावित नहीं होंगे। वो असल और अडोल हो जाएगा। प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी और प्रकृति पति असल हो जाएगा। तो कहेंगे ये तो गार्ड का काम है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको इतना नशा रहता है और याद में रहते, सब तो परिपूर्ण नहीं बने, तुम जानते हो ये भाविक चलने वाली नहीं है। कौन सी भाविक? विनाश की। बाहर की दुनिया का, पूरी दुनिया का, इस दुनिया का तो विनाश हो गई, लेकिन पहले ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी विनाश होना है। जैसे रुद्र ज्ञान या जिसके विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, ये नियम बना हुआ है। ये भावी चलने वाली नहीं है, अन्न नहीं है, मनुष्यों के रहने के लिए जगह नहीं है। ब्राह्मणों का अन्न कौन सा है? खुराक कौन सी है? ज्ञान तो पेय है, पीने की चीज है। ज्ञान से कोई पावर नहीं आती है आत्मा में, याद से पावर आती है। ज्ञान तो है पहचान, तो याद है हमारी खुराक आत्मा की। तो अन्न नहीं है माना याद की अग्नि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाप की पहचान होगी, एक जाति बाप की पहचान होगी तो अन्न भी भरपूर होगा, और पहचान ही नहीं समझे बैठे परमात्मा कर जाती है तो कहां कहां बुद्धि भटकाएंगे। जहां जहां बुद्धि भटकेगी तो बुद्धि कमजोर होती जाएगी और पावरफुल बनेगी, कमजोर होती जाएगी। तो अन्न नहीं है, मनुष्यों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, माना कोई ठिकाना नहीं मिलता, डके खाते रहते हैं। पांडवों ने क्या किया? दरदर डके खाए। तो ये ड्रामा में नूद है। हैं? तो गलत सब मरे जबकि उन्होंने परमात्मा बाप के डायरेक्शन को पूरा करने का फैसला कर लिया। देहदान से मर जाना कोई खराब बात है क्या? ऊंची स्टेज में जाकर के गल मरना देहदान से, ये कोई खराब बात हो गई क्या? मनुष्य में रहने के लिए जगह नहीं है, तीन पैर प्रकृति के नहीं मिलते। तुम हो ईश्वरीय परिवार, माता पिता और बच्चे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ, औरों के आगे प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। जो बाप के बच्चे बनते हैं मैं उनके आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम बाप की मत पर चलते हैं, बाप भी कहते हैं मैं बच्चों को ही सन्मुख आकर मत देता हूँ। क्या? हाँ, जो बच्चे नहीं बनते उनके सन्मुख आकर के मैं बाप के रूप में मत नहीं देता हूँ, अम्मा के रूप में भले आ जाऊँ, इनडायरेक्ट मत भले दे दूँ ब्रह्मा के तन द्वारा, लेकिन ब्रह्म मन बड़ी माँ मन माँ, तो ब्रह्मा मन बड़ी माँ के रूप में परमात्मा आया तो डायरेक्ट आया या इनडायरेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट। तो जो बच्चे नहीं बनते हैं उनके मैं सन्मुख नहीं होता हूँ, और जो बच्चे बनते हैं उनके सन्मुख मैं बाप के रूप में डायरेक्ट आकर के मत देता हूँ। तो जो मत पर चलेंगे वो वर्षा पाएंगे, बच्चे ही समझेंगे है। सिर्फ माँ को जो पहचानने वाले हैं, बाबा ने बोला है सिर्फ देवी की पूजा करने वाले हैं रावण संप्रदाय। देवी कोई विधवा है क्या? देवी को माता कहा जाता है तो विधवाओं की पूजा होती है भारत में क्या? विधवाओं की तो नहीं पूजा होती, पूजा किसकी होती है? सदवा माता की पूजा होती है, हैं? तो बच्चे ही समझेंगे, अगर नहीं समझते हैं तो छोड़ो। अपने को बच्चे भी कहते हैं कि हमें मिलकर पैदा हो गया कि ये बाप है, और फिर बाप जब कोई बात समझाते हैं तो कहते हैं हमें नहीं समझ में आता। तो बाप क्या कहते हैं इन्हें? छोड़ो, लड़ने की कोई बात नहीं, इसमें लड़ाई लड़ने की बात ही नहीं। हम परिचय देते हैं बाप का, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और सुदर्शन चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मन मना भव मध्यादि भव का अर्थ भी यही है, बाप का परिचय दो, ये सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। अगर बाप का असली परिचय दे दिया तो उसे सिद्ध क्या होगा कि गीता का भगवान कृष्ण अर्थात संगम युग में ब्रह्मा को जो गीता का भगवान मान लिया है, ब्रह्मा को भगवान का रूप मान लिया है, वो ब्रह्मा भगवान का रूप नहीं है, वो स्वर्ग का रचयिता नहीं है, सर्व का सदगति दाता स्वरूप नहीं है। अगर होता तो मंदिर बने होते, मूर्तियों की पूजा होती होती, लेकिन न मंदिर बने हुए हैं ब्रह्मा के न मूर्तियों की पूजा होती है, इससे साबित होता है कि उससे कोई प्राप्ति नहीं हुई। तो क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझ जाए ना, मुख्य एक ही बात है। क्या?
कि क्रिएटर कौन है, रचयिता कौन है विश्व का, और रचना कौन है फर्स्ट क्लास। मुख्य एक ही बात है गीता में, मुख्य ये एक ही भूल है क्या कि रचना कृष्ण को गीता का भगवान पति बनाए दिए। रचना तो बच्चा होती है, बच्चे को ही रचना कहा जाता है और बाप को रचयिता कहा जाता है। तो नई सृष्टि का जो कृष्ण बच्चा है उस बच्चे को जन्म देने वाला कोई रचयिता भी तो होगा कि बच्चे ने ऐसे ही जन्म ले लिया। तो जो रचयिता बाप है, क्रिएटर है, वही गीता का भगवान है। गीता माता है और गीता पति भगवान है। गीता माता से सदगति नहीं होती, किससे सदगति होती है? गीता पति भगवान ही स्वयं सदगति करने वाला है, एक के अलावा कोई दूसरा सदगति करने वाला नहीं हो सकता। न गीता हो सकती, न गंगा हो सकती, और न कोई मनुष्य आत्मा सदगति करने वाली हो सकती। बाप कहते हैं मुझे कल्याणकारी को ही आकर के कल्याण करना है। कौन सा कल्याण करना है? गति सदगति देने का कल्याण मुझे ही आकर के करना है, बाकी सिर्फ शास्त्र से कल्याण नहीं हो सकता। पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है, उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो क्या? जिस भगवान को तुम याद करते हो हिंदू है, याद कर रहे हैं बैठे बैठे, तो उसको जानते हो? अरे जानने की क्या बात है, बिंदु है जान तो लिया, वो तो तुम आत्मा भी बिंदु हो, मनुष्यों की आत्माएं भी बिंदु है, कीट पशु पक्षी पतंगे सब सब बिंदु है, तो तुमने क्या जान लिया? कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिंदु है परमात्मा? पैथोलॉजी का कैसे पता चले? ब्रह्मा की फोटो में जो बिंदु देखे है सोई भगवान, बिंदु कई आंखों से देखता है। अनुभव कैसे होगा जब मुरली ने ही कह दिया कि बिंदु बिंदु आत्माओं का वो सिर्फ बाप है, वो बच्चा नहीं बन सकता, वो बाबा ग्रैंडफादर नहीं बन सकता, वो सिर्फ एक ही संबंध है बिंदु बिंदु आत्माओं पर परमात्मा सुप्रीम सोल के साथ। कौन सा? वो सिर्फ बाप है, दूसरा संबंध नहीं। जब वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शरीर में आता है तब दूसरे दूसरे संबंध बनते हैं। साजन सजनी का संबंध है, बाप बच्चे का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, बंधु का संबंध है। ब्रह्मा के शरीर में आया लेकिन ब्रह्मा के शरीर में माँ बन करके आया ना, पालना दी, जन्म दिया, लेकिन वर्षा तो माँ से नहीं मिल पाए। जन्म भी देने वाला बाप होता है, बाप ही जन्मदाता कहा जाता है। तो उस ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान का बीजारोपण नहीं किया गया, माँ ज्ञान के बीज को धारण करने वाली है या बीज देने वाली है? माँ तो बीज को धारण करती है, तो बीज जो है वो बीज डालने वाला पिता होता है। तो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा को साक्षात्कारों का रहस्य स्वतः पता नहीं चला, उन साक्षात्कारों का रहस्य बताने के लिए भी परमात्मा को कोई दूसरे तन में मानो पूरी बंगाल में उस रथ को पकड़ा। ऐसा व्यक्तवाणी में क्यों बोला कि ब्रह्मा बाबा को भी सिंध हैदराबाद से बनारस में और बनारस से पूरी बंगाल में जाना पड़ा। तो बीज ब्रह्मा ने नहीं डाला, बीज डालने वाला, ज्ञान का बीज डालने वाला ब्रह्मा के अंदर भी कोई और था। तो पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान एक है, उनको तुम याद करते हो परंतु जानते नहीं हो। बाप को याद करना है तो परिचय भी तो चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं, लिंग को याद करेंगे, लेकिन इतना बड़ा लिंग परमात्मा होगा क्या? उसमें जो बिंदु स्टार दिखाया है, हीरा जो दिखाया गया, वो वास्तव में उस सुप्रीम सोल की यादगार, और जो लिंग दिखाया गया वो साकार स्वरूप की यादगार है। जो साकार स्वरूप बुद्धि से ऐसी स्टेज वाला है कि उसे इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती, इसलिए वो लिंग दिखाया गया है। सुनते हुए न सुनना, देखते हुए न देखना, इंद्रियों से भोग भोगते हुए भी जैसे न भोगना, ऐसी निराकारी स्टेज का गायन, ऐसी निराकारी स्टेज की मूर्ति वो लिंग बनाई हुई। तो निराकार का मतलब बिंदु नहीं, निराकार का मतलब निराकारी स्टेज वाला। सिर्फ ये कह दिया जाए कि परमात्मा इवर प्योर है तो शरीर होगा तब तो इवर प्योर है, इवर इम्प्योर का पता चलेगा। अगर शरीर ही नहीं तो कैसे कहा जाए कि ये इवर प्योर है और ये इवर इम्प्योर है? इसकी माप क्या होगी, इसकी तौल क्या होगी? तो परमात्मा जो निराकार है उसकी तौल है कि वो साकार सृष्टि पर आता है और आकर के भी ढेर बच्चों के संसार के संपर्क में रहता है और रहते हुए भी निराकारी निर्विकारी निसंकल्प स्टेज में रहता है। तो परमात्मा को कहा जाता है निराकारी निरहंकारी और निर्विकारी। शरीर तो अभी तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूर कोई आत्माएं हैं जो सृष्टि के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक, अंतिम जन्म को छोड़ करके थोड़े समय को अंतिम जन्म तक ऊंची स्टेज में रहने वाली हैं। वो और क्या, बिना बने, बिना बने कैसे मिलेंगे? जब हमें मालूम है कि ये दुश्मन आ रहा है तो दुश्मन से तो झगड़ा हो जाएगा, मिलेंगे कैसे? पहले परमात्मा का बनना होता है, फिर बनने के बाद मिलना होता है। मुस्लिम क्या वो तो इसलिए बताया हुआ है कि झाड़ के चित्र में जो तना गया है ऊपर की ओर, उसमें जहाँ पर मुस्लिम धर्म दिखाया गया है वहाँ पर राम का व्यक्तित्व दिखाया गया खड़ा हुआ, राम का चित्र वहाँ खड़ा हुआ है। इसका मतलब है राम वाली सोल का बिल्कुल अंतिम जन्म में आकर के कनेक्शन जुटा हुआ है, यानी जो राम वाली सोल है उसको उठाने का निमित्त वो मुस्लिम धर्म बनता है, इसलिए ये बात बोली गई है। अगर कहीं बोली गई है तो हाँ, तो घर में बोलते हैं तो ये दक्षिण की, दक्षिण भारत की बात हुई ना, है यूपी में कहा गया? ये बात बता रहे हैं। हाँ, तो बात तो यहाँ की है ना, बात यहाँ की है कि यहाँ भी तो कोई अरब देश है, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भेड़ बकरियों का देश है तो कोई, उस भेड़ बकरियों के देश में अगर तुम ये ज्ञान जल लेकर के जाओगे मुसलमानों का रूप धारण करके कि हम तो भाई इब्राहिम के फॉलोअर हैं, हम तो इस्लामी के फॉलोअर हैं, हम तो तुम्हारे ही कुल के हैं, और वहां जाकर के तुमने ज्ञान जल डाला तो वो तो पहचान लेंगे, पहचानेंगे और तुमको ठिकाने लगा देंगे। कहाँ की बात हुई? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया की बात हुई ना? तो बातें तो सभी यहाँ की हैं जो भक्ति मार्ग में चली आ रही है, बाकी वो स्थूल जल डालने से तो कुछ होता नहीं। तो क्रिएटर और क्रिएशन का राज तो समझना है, मुख्य एक ही बात है, बाप को याद करना है तो परिचय भी चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, आते हैं व नहीं आते हैं। बाप वर्षा तो जरूर यहाँ के लिए देंगे, वह वहां के लिए देंगे, बाप तो सन्मुख चाहिए ना, किस बात के लिए? वर्षा देने के लिए बाप सन्मुख चाहिए ना। तो अभी ब्राह्मणों को वर्षा मिल गया है कि मिलना है? अभी मिला तो नहीं है। ब्राह्मणों को वर्षा मुक्ति, जीवन मुक्ति का, सुख और शांति का, सदा की सुख शांति का वर्षा तो अभी नहीं मिला है, मिलना है। तो वर्षा सन्मुख बाप होगा तो मिलेगा, या सन्मुख नहीं होगा तो भी मिल जाएगा, सन्मुख होगा तभी मिलेगा। शिवरात्रि भी मनाते हो, शिव तो सुप्रीम फादर है सब आत्माओं का, वो रचयिता है, नई नॉलेज देते हैं, षष्ठ चक्र के आदि जंतु को वो जानते हैं, वो है ऊंच से ऊंच टीचर जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। मनुष्य तो कभी राजयोग सिखला ही नहीं सकता, हमको भी उसने राजयोग सिखलाया तब सिखलाते हैं। गीता में ये शुरुआत में और अंत में मन मना भव और मध्याजी भव कहा हुआ है, क्या न आदि में और न मध्य में? कब कहा? आदि में कहते हैं, लेकिन मध्याजी भव कब होगा? अंत में होगा। मध्याजी भव मना जो भी यज्ञ करें, जो भी हम कर्म करें, वो कर्म किसके अर्थ करें? परमात्मा के अर्थ करें। तो ये अंत में ही हो सकता है। मत याजी भव, मेरे लिए यज्ञ करने वाला भव, अर्थात जो भी कर्म कर मेरे लिए कर, स्वार्थ के लिए कोई कर्म न कर। मान लो नौकरी करते हैं तो नौकरी का भी उद्देश्य क्या है? क्या हम ईश्वरीय सेवा में मददगार बने? वो भी नौकरी तब तक कराएंगे जब तक ज्ञान सुनाने में तुम एक्सपर्ट नहीं बनते हो। जो ईश्वरीय सेवा है वाचा और मनसा की, उस मनसा में पावरफुल नहीं बनते हो, ज्ञान तुम्हारी रग रग में धारणा में नहीं समाया हुआ है, तब तक कहेंगे तुम नौकरी करो। और जब तुम्हारी रग रग में ज्ञान समा जाए, तुम सर्व केवल बाप के बच्चे बन जाओ, तो बाप वो टके की सर्विस क्यों करने देंगे? बाप के पास कोई खाने की कमी है क्या? नहीं है? बहुत ढेर सारे हैं जिनकी मनसा और वाचा ज्ञान में नहीं लगती है, वो कर्मा सेवा करके पैसे कमाएंगे और यज्ञ में डालेंगे। पैसा यज्ञ में देना कोई बड़ी बात है, या मनसा की पावर यज्ञ में देना बड़ी बात है? वाचा की सेवा देना यज्ञ में बड़ी बात है? वाचा सेवा सब नहीं कर सकते, मनसा सेवा सब नहीं कर सकते। जिनकी मनसा कंट्रोल होगी, जिनकी मनसा निर्विकारी बनी होगी, वो एकाग्र होकर के वो मनसा की पावर दे सकेंगे। झाड़ का ब्रह्मा का नाली की भी बुद्धि में रहना है, डिटेल में समझाना पड़ता है और रिजल्ट में फिर भी एक ही बात आती है। बाप और बच्चों की याद करो, मनुष्य मरते हैं तो फिर जायदाद की डिटेल निकालनी पड़ती है। यहाँ तो एक ही बात है, हम विश्व के मालिक बनेंगे, विश्व का कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बनाती है, स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, नरक का थोड़े ही मालिक बना देंगे। दुनिया ये नहीं जानती है कि नरक का रचयिता रावण है, तीसरा पीठ, और स्वर्ग का रचयिता राम बाप है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, सबकी वान पर सब अच्छा है, मैं लेने के लिए आया हुआ हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होगी, आत्मा मैल से शुद्ध हो जाएगी, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है? क्या कि जब हम आत्मा शुद्ध बन जावेंगे तब बाप हमको स्वर्ग में भेज देंगे, कहेंगे अब तुम रहो स्वर्ग में, हाँ परमधाम में बैठ के कहेंगे। परमधाम में बैठ करके धर्म पिताओं को पैगंबरों को भेजते हैं क्या? ये कहाँ का गायन है? ये भी संगम युग में इस समय का गायन है कि वो धर्म पिताएं भी परमात्मा बाप के सामने आकर झुकेंगे और परमात्मा बाप उनको कहेंगे अपने धर्म खंड में जाकर के धर्म की स्थापना करो। ये निश्चय बुद्धि से किसको समझाना है कि तुमको बाप स्वर्ग में भेजेंगे, तोते माफिक नहीं, कि परमात्मा बिंदु है, वो हमको स्वर्ग में भेजने वाला है, पहले शांति धाम में भेजेगा फिर सुख धाम में भेजेगा। तो ये सब हुआ तोते माफिक जाए, क्योंकि बुद्धि से समझा नहीं है कि बिंदु कैसे भेजेगा। बिंदु आत्मा थोड़ा ही कुछ कर सकती है बिना शरीर के, शरीर के बगैर आत्मा जैसे जड़ बत हो जाती है। हाँ सही बात है, जब देह भान है तो जरूर आत्मा की स्मृति भूली हुई है। क्या हाँ किसके द्वारा दिखाएंगे? यहाँ ब्रह्मा नहीं होता है क्या? ब्रह्मा के बगैर शिव बाबा आकर के पढ़ाई पढ़ाएंगे क्या? ब्रह्मा के बगैर स्वर्ग स्थापन होगा क्या? तो जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, ये क्यों बोला? हाँ फोटो चाहिए तो फोटो निकालने लायक बनो ना, पहले अपना फोटो निकालो कि हम बाबा के बच्चे बन चुके भाई बहन। अगर कमजोरी आती है तो फिर भाई बहन बने ही नहीं, और जब भाई बहन बने नहीं तो बाप के बच्चे भी बरसा लेने लायक बने ही नहीं, तो फोटो किसका निकालोगे? बाप का ही फोटो निकालना है ना, किसको निकालना है? बच्चों को, तो बच्चे आपस में भाई भाई बन गए। हाँ सब थोड़ा ही बाप का फोटो खींच सकेंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये निश्चय बुद्धि से किसी को समझाना है, निश्चय बुद्धि को फिर रोने की या देह अभिमान में आने की बात नहीं रहेगी। क्या रोते कौन है? जो देह भान में आते हैं वो रोते हैं। देह अभिमान बहुत गंदा बना देता है। अब तुम देही अभिमानी बनो, शरीर निर्वाह अर्थ काम करो, वो तो कर्म सन्यासी बन जाते हैं, तुमको तो कोई कर्म सन्यासी नहीं बनना है। यहाँ तो तुमको व्यस्त व्यवहार में भी रहना है, बच्चों को भी संभालना है और बाप को और चक्र को जानना तो बहुत सही। बाप को कितने बच्चे हैं, फिर उनमें कोई सपूत है कोई कपूत है, नाम बदनाम करते हैं, काला मुंह कर देते हैं। तो जो काला मुंह कर देते हैं वो बाप के ओरिजिनल बच्चे हुए? बाप कहते हैं काला मुंह नहीं करो, बच्चा बनकर और फिर कालम करते हो तो लोग कलंकित बनते हो।